HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original. इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रही हूँ इस सृष्टि के सबसे प्राचीनतम स्थान पर, जो आज के समय में नेपाल में स्थित है, माता सती के दाएं गंड यानी गाल गिरने से बना गंडकी शक्तिपीठ, जो इस सृष्टि के प्राचीनतम और सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। यहाँ की शक्ति है गंडकी चंडिका और शिव यानी भैरव को चक्रपाणि कहा जाता है। ये वो पवित्रतम स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु को सती वृंदा के श्राप से मुक्ति मिली और वो स्वयं यहाँ मुक्तिनाथ के नाम से स्थित हो गए और ये स्थान मुक्ति धाम बन गया। और यही मुक्ति धाम से निकली पवित्र गंडक नदी, जो गंगा की सप्त धाराओं में से एक है। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्ति पीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्ति पीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे। कहते हैं कि जब कलयुग में गंगा नदी नहीं रहेगी तब गंडकी नदी ही सबका भरण पोषण करेगी, इसलिए पुराणों में इसे सदा नीर नाम भी दिया गया। इस नदी के पत्थर से ही अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की मुख्य मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति के लिए इस नदी का पत्थर ही क्यों, इसका रहस्य मैं आपको आगे बताऊंगी। ये स्थान प्राचीन काल में मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, स्कंद, वाराह, पद्म सहित सभी पुराणों में मुक्ति क्षेत्र व शालग्राम अर्चना विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्थानों के भी अपने भाग्य होते हैं। ये ऐसे स्थान हैं जिनकी महिमा शब्दों में कहना असंभव सा होता है। कभी कभी इनकी महिमा लिखते लिखते मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मन श्रद्धा और ईश्वर के प्रति कृतार्थ भाव से भर जाता है। अपने भक्तों के कल्याण और सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं ईश्वर कितने कष्ट उठाते हैं। कभी कभी लगता है कि ईश्वर होना कितना कठिन है। विष्णु पुराण के अनुसार आज से करीब 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सृष्टि की शुरुआत हुई थी। साथ ही करीब 10 करोड़ वर्ष पूर्व क्षीर सागर जब उठकर हिमालय बना था, उसके बाद करीब 3 करोड़ वर्ष सरीसृप युग रहा था और उसके बाद विश्व ब्रह्मांड में सभ्यता की शुरुआत जम्बू द्वीप के आर्यवर्त से हुई थी। कालांतर में पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित हुई। उसमें सर्वप्रथम मानव सभ्यता का विकास सरीसृप युग के बाद जम्बू द्वीप में हुआ। उस जम्बू द्वीप में 4 क्षेत्र, 4 धाम, सप्तपुरी आदि का वर्णन मिलता है, जो आज का भारत देश है। और उसमें प्रमुख मुक्ति क्षेत्र हिमवत खंड हिमालय नेपाल में पड़ता है। विष्णु पुराण में सती वृंदा की एक कथा आती है। उसके अनुसार वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसे कई सिद्धियां हासिल थी। वो दैत्यों की वैद्यराज भी थी। उसके अंदर किसी को भी स्वस्थ करने का अद्भुत ज्ञान था। भगवान शिव के क्रोध से जालंधर की उत्पत्ति हुई। वो भगवान शिव के समान ही सुंदर और बलशाली था, लेकिन क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वो नकारात्मकता से भरा हुआ था, इसलिए वो राक्षस बन गया। अपने बल और बुद्धिमत्ता से जालंधर राक्षसों का राजा बना और देवताओं के साथ उसने कई युद्ध लड़े। एक युद्ध में घायल हो जाने पर वृंदा ने उसका उपचार किया और दोनों ने प्रेम से वशीभूत होकर विवाह कर लिया। पतिव्रता स्त्री से विवाह होने के कारण जालंधर अजय हो गया। जब देवताओं और दानवों में निर्णायक युद्ध हुआ, तब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को जीत ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वो भगवान विष्णु की शरण में गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ कोई छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा युद्ध में जालंधर को मृत्यु प्राप्त हुई। उसका कटा हुआ शीश जब वृंदा के महल में गिरा तब वृंदा ने देखा कि मेरे पति तो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? वो क्रोधित हो उठी और पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, जिस प्रकार षड्यंत्र से मुझे मेरे पति से दूर किया गया आप भी अपनी पत्नी से इसी प्रकार दूर कर दिए जाओगे, आप भी विरह अग्नि में जलोगे। आपने अपने भक्त के साथ अन्याय किया इसलिए आप पत्थर के हो जाओ और कीट बनकर जीवन जियो। भगवान तुरंत पत्थर हो गए और उसी रूप को शालिग्राम कहा जाता है। सभी देवता हाहाकार करने लगे। उसके बाद अपने पति का शव लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम वृंदा है, इसे तुलसी भी कहा जाएगा और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में ही रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में आज भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इस प्रकार भगवान नारायण ने स्वयं कष्ट उठाकर वृंदा को उसकी भक्ति का पारितोषक दिया और हमें पवित्र वृंदा यानी तुलसी का पौधा और शालिग्राम प्राप्त हुए। लेकिन इसी श्राप के कारण श्री राम और सीता को विरह अग्नि में जलना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ, ईश्वर होना सरल नहीं है। कहते हैं सती वृंदा के इस श्राप से प्रभु को मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा जी ने इसी गंडकी नदी के किनारे गंडकी शक्ति पीठ में यज्ञ किया। एक सती के श्राप से मुक्ति एक सती की उपासना से ही मिली। इसी से सर्व पाप विनाशिनी मुक्ति क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ की नदी में आज भी शालिग्राम पत्थर बहुतायत में निकलते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का ही स्वरूप कहा गया है। इसी तरह विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा अनुसार भगवान श्री बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ के बीच में अनन्य संबंध है, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ के गर्भगृह में भी शालिग्राम भगवान की ही पूजा होती है। इसी तरह भगवान जगन्नाथ का भी दारू विग्रह है और उनके गर्भगृह में भी शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। और यही कारण है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल की इसी गंडकी नदी से शिलाएं लाई गई हैं। इसे लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे आखिर राम जन्मभूमि में प्रभु राम के जिस स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा उस स्वरूप के लिए सुदूर नेपाल से ही शिलाएं क्यों लाई गई हैं? इसका कारण ये है कि गंडकी नदी में ही प्रभु नारायण ने शालिग्राम का रूप धारण किया था और वो शालिग्राम रूप में यहाँ स्थित हो गए, इसलिए गंडकी नदी को नारायणी भी कहा जाता है और इसके हर पत्थर में भगवान के शालिग्राम रूप का वास माना जाता है। इन्हें साक्षात विष्णु रूप कहा गया है। 127 क्विंटल की शिलाएं नेपाल से सड़क मार्ग से अयोध्या लाई गई हैं। मूर्ति के लिए इस्तेमाल करने से पहले विधि विधान से इनकी पूजा की जाएगी। विज्ञान के अनुसार इन 6 लाख साल पुराने शालिग्राम पत्थर की खासियत ये है कि ये पत्थर एक तरह का जीवाश्म यानी फॉसिल है, जो कि 33 तरह के होते हैं। इस पत्थर का निर्माण प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से टेथिस सागर में पाए जाने वाले कीड़ों के जीवाश्म से हुआ था, जो अब हिमालय पर्वत है। इस प्रकार विज्ञान से भी हमारी कहानी की पुष्टि होती है। कालांतर में गंडकी नदी के संरक्षक शांडिल्य ऋषि रहे। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी गंडकी नदी के किनारे स्थित था। यहीं पर देवी सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। आज से 300 साल पहले अयोध्या में जन्मे अद्भुत बालक स्वामी नारायण ने भी मुक्ति क्षेत्र और काकवेणी के मध्य एक शिला पर कठोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये नदी नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्रामी, नारायणी, सप्त गंडकी आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर गंडकी नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन कर लेता है वो पाप मुक्त होकर मुक्त हो जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति की कोई अधूरी इच्छा या मनोकामना है तो वो भी यहाँ एक बार गंडकी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से पूरी हो जाती है। इस जगह पर तर्पण करने से 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। नेपाल की सुरम्य धौलागिरी और अन्नपूर्णा पहाड़ियों के मध्य 3,800 मीटर यानी 12,172 फीट की ऊंचाई पर गंडकी नदी के तट पर पोखरा एयरपोर्ट से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जिसे मुक्तिनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये देवी सती, भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रमुख और सिद्ध उपासना स्थल है। बहुत सारी सरल सीढ़ियां चढ़ते हुए हम मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर का गेट बौद्ध मंदिरों के जैसा ही है। अंदर पहुंचते ही दो कुंड हैं, जिन्हें दामोदर कुंड कहा जाता है, जिनका स्नान बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये मंदिर सफेद रंग का पैगोड़ा आकार यानी नेपाली शैली में बना हुआ है। मंदिर आकार में छोटा है लेकिन बहुत ही मनमोहक है। मंदिर की अनूठी बात यह है कि मंदिर के बाहरी प्रांगण में 108 नंदी बैलों के चेहरे बने हुए हैं, जिसके माध्यम से पानी डाला जाता है। मंदिर परिसर के चारों ओर 108 पाइपों से हो रहा ये दिव्य जल प्रवाह 108 श्री वैष्णव दिव्य देशम से पवित्र पुष्करणी जल को इंगित करता है। भक्त कड़ाके की ठंड में भी यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। प्रांगण में ही एक यज्ञशाला भी है। गर्भगृह में ही देवी काली की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है, जिनके नेत्र सोने के हैं। भगवान विष्णु यहाँ शालिग्राम रूप में स्थित हैं। इसे भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीनतम हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। साथ ही ये भगवान विष्णु के मुख्य 8 पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु की यहाँ एक ऊंची मूर्ति भी है, जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई है। ये मंदिर एक दिव्य सुगंध से महकता रहता है। मनोहर वादियों में स्थित इस दिव्य स्थान पर आकर मन अत्यंत शांति प्राप्त करता है। यहाँ आकर भक्त अपने समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है और इसीलिए ही इसे मुक्ति धाम कहा जाता है। नवरात्रि और शिवरात्रि का त्योहार यहाँ बड़ी ही भक्ति के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि नवरात्रि के उत्सव के मौसम में देवी गंडकी को यज्ञ भी अर्पित किए जाते हैं। अगर आप मुक्तिधाम मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो जून से अगस्त के बीच में यात्रा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मॉनसून आपकी सारी यात्रा खराब कर देगा। मार्च से मई या सितंबर से अक्टूबर तक की यात्रा का समय यहाँ आने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की यात्रा का मार्ग काफी कठिन है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण आवश्यक सामान जैसे कंबल, टॉर्च, फर्स्ट एड किट और ग्लव्स साथ लाने की सलाह दी जाती है। भारतीय नागरिकों को नेपाल में प्रवेश करने के लिए ना पासपोर्ट और ना ही वीजा की आवश्यकता होती है। आपके पास केवल आपका आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन फ्लाइट से आने वालों के लिए बिना वीजा के पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे आंध्र प्रदेश और दर्शन करेंगे सर्वशैल शक्तिपीठ के, जहां देवी सती का बायां गाल गिरा था। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइनिंग अमरिंदर सिंह ने की है।
This was an HD Smartcast original.
HD Smartcast.